તારીખ 2/3/1996 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મહાવીરજીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 1
જે અંતરણ પરિણમનથી પહેચાન કરતા હૈ ઉસ મોક્ષ કા પરિણમન કૈસા હોતા હૈ સબ વિસ્તાર બતાયે મોક્ષ ज्ञानी के अंतरंग परिणमन की पहचान करता है। ऐसा ज्ञानी का अंतरंग परिणमन की पहचान करने की योग्यता जिसमें होती है, निर्मलता जिसको होती है, उनका परिणाम ज्ञानी के जैसे होने लगता है। कैसे, क्यों ऐसा होता है कि जो मोह रहित परिणाम है और आत्मा के संवेदन रूप परिणाम है, स्वरूपाकार परिणाम है और निज परमात्म तत्व के प्रति सदृश भाव से परिणमते हुए बहुत आकर्षित हैं। ऐसे परिणाम को देखने वाले को देखते ही ऐसे असर अपने परिणाम में होने लगती है। ये बात अवश्य है कि देखने वाले की योग्यता ऐसी होती है तब वो देखता है, और योग्यता होती है तो असर भी पहुंचती है। योग्यता के कारण असर पहुंचती है।
योग्यता कैसे
पहुंचती? योग्यता में दृढ़ मुमुक्षुता होती है। योग्यता में जो उपदेश ज्ञानी से मिलता है उसको अवधारण करने की, उसका अमलीकरण करने की उनकी तैयारी होती है, और खुद ही अंतर्मुख होने की अभिलाषा रखता है। उसकी जो वृत्ति है वो अंतरात्म वृत्ति हो गई है, इसलिए वो परिणमन को पहचान सकता है और पहचानने से उस परिणति के असर भी उनको पहुंचती है। जैसे अभी पदमचंद जी ने बात किया कि पूज्य सुगानी जी ने एक ही प्रवचन सुनते ही अनुभूति कर दी। तो जब वो प्रवचन सुनते थे उस वक्त और भी 100-200-300 जने सुनते होंगे। गुरुदेव के प्रवचन में तो 200-400 की उपस्थिति सरासर बराबर रहती थी, और भी लोग सुनने में तो थे ही। तो उनको ही अनुभव हुआ, इसका क्या कारण? ज्ञान और राग भिन्न है, वो बात तो सबने सुनी और अब भी सुनने को मिलती है, टेप में से भी सुनने को मिलती है। गुरुदेव के प्रवचन शास्त्र में भी पढ़ने में आती है और अनेक वक्ताओं से भी वो बात तो हम सुनते हैं, वेद ज्ञान की ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। किसी एक को अनुभव होता है, औरों को नहीं होता है, तो इसकी कोई वजह भी होनी ही चाहिए। इसकी भी कोई खास वजह होनी चाहिए ना। तो बात तो वो थी कि वो बात केवल सुनने की नहीं थी, बाहर में प्रसंग अवश्य सुनने का सुनाने का था, लेकिन उतनी बात नहीं थी। वो बात ऐसी थी कि गुरुदेव जब ये बात कहते थे तो उनके परिणमन भी वैसा ही था, मात्र कहने की बात नहीं थी। परिणमन हो करके परिणमते वो कह रहे थे, पर उतनी पैनी नजर जिसकी थी उनको ही परिणमन देखने में आया। पैनी नजर तो योग्यता के बिना होती नहीं, उतनी पात्रता लेकर वो आए थे। ऊपर ऊपर से हमें ऐसा दिखता है कि एक प्रवचन सुनने से काम हो गया, लेकिन उनकी पूर्व तैयारी कितनी थी वो बात का बहुत महत्व है इस विषय में। पूर्व तैयारी का जो भी प्रकार है इसका बहुत महत्व है। वो बहुत तैयारी लेकर के आए थे, योग्यता लेकर के आए थे, पर जिनको परिणमन नहीं हुआ उनकी इतनी योग्यता और पूर्व तैयारी नहीं थी। बात तो जो थी वो थी, लेकिन अकेले बात से तो काम नहीं होता, अगर होता तो सबों का होता। इसलिए ये बात अवश्य है कि बाहर के सुनने की केवल बात नहीं है, अंदरूनी बात कुछ और है कि उनका जो अंतरंग परिणमन है गुरुदेव का, वो परिणमन देखने की योग्यता होते ही उनको पहचान हुई, और पहचान हुई यही सम्यक दर्शन प्राप्त होने का पहला कदम है। यही सम्यक दर्शन की दिशा में पहला कदम हुआ। ज्ञानी का सत्संग और सत्संग में उनके भाव के समीप जाना, उतना समीप जाना कि उसके पहचान हो जाए, तो स्वरूप की पहचान होने का पुरुषार्थ चलेगा, प्रयोग चलेगा, और स्वरूप की पहचान होगी। पहचान होने से एकाग्रता होकर के अनुभव हो सकता है। तो मुमुक्षु का परिणमन भी इस परिणमन के असर को झेलता है और अपने आप में वो ऐसा परिणमन करने का पुरुषार्थ को जागृत कर सकता है और जागृत करके अपना काम करता है। आपने प्रवचन में कहा कि ज्ञानियों के समागम से सम्यक दर्शन होगा, इस काल में सम्यक ज्ञानी नजर आते नहीं है, तो क्या सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? ऐसा है कि इस काल में कोई सम्यक ज्ञानी होगा ही नहीं, ऐसा तो हमें नहीं मान लेना चाहिए। अगर होगा तो भी हमारी पहचान करने की क्षमता है कि नहीं है, उसकी भी पहले हमें जांच तलाश करके तैयारी करनी होगी। देखो, ये जीवन मरण का सवाल है। जैसे पानी की प्यास लगे और हम रेगिस्तान में हुए, ज्ञानी नहीं है इसका मतलब कि रेगिस्तान है। रेगिस्तान में पानी की प्यास लगे तो हम मरने की तैयारी करते हैं या पानी ढूंढने की तैयारी करते हैं? हम क्या करेंगे कि चलो ये तो रेगिस्तान है, पानी तो यहां मिलेगा ही नहीं, चलो मर जाए। ऐसा सोचता है क्या? जैसे कैसे भी कहीं से भी पानी मिले उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। प्रयास करें, ज्ञानी को खोजने के लिए, मिलने के लिए प्रयास करें। मान लो के प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिले। मानो और हमारा आयुष पूरा हो गया प्रयास करते करते, ऐसे परिणाम सहित देह त्याग होने का फल क्या हो सकता है मालूम है? क्या फल हो सकता है प्रेम सिंह जी? नहीं, ऐसे परिणाम लेकर के जो आयुष्य पूरा करता है मुमुक्षु, दूसरे भाव में वो ज्ञानी के चरण में ही पैदा होता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये खोज का फल उसको फौरन मिलता है। प्रयास का स्वरूप क्या है? हम योग्यता तैयार करें और जहां भी आत्मज्ञान की चर्चाएं हो, आत्मज्ञान की बातें हो, आत्मज्ञान होने की जहां कुछ भी प्रवृत्ति चलती हो वहां आवागमन करें। ये तीर्थयात्रा हमारे यहाँ क्यों है? तीर्थयात्रा का व्यवहार क्यों है हमारे यहाँ? क्योंकि ज्ञानियों का आवागमन वहां होता है, मेले होते हैं, धार्मिक प्रसंग होते हैं, धार्मिक शिविरें होती हैं, धार्मिक प्रवचन होते हैं, तो वहां ढूंढे खोजे। जिसको पानी की प्यास लगी है उनको तो पूरे गर्मी के दिनों में ठंडी हवा भी कहीं से आई न, तो जलाशय का आसार उनको मालूम पड़ जाएगा कि इधर पानी हो सकता है, इधर से क्यों ठंडी हवा आती है। ये भी सुगानी जी का जीवन में वही तो बना। वो अजमेर में रहते थे उन दिनों में, और अजमेर में तो कोई ज्ञानी थे नहीं, और वो जानते भी नहीं थे कि ज्ञानी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या हिंदी भाषी होंगे, गुजराती भाषी होंगे, कौन भाषी होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन वो शांति के खोज में थे, और शांति के खोज में तो शांति दाता मिले तब तो शांति मिले। बहुत तड़पते थे, जैसे बिना पानी प्यासा जन तड़पते हैं वैसे ही तड़पते थे। जिंदा रहना मुश्किल हो गया था, तो ऐसे मामलों में कुदरत बंधी हुई है। जब किसी की भावना ज्ञानी के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए या आत्म शांति प्राप्ति के लिए चरम सीमा को पहुंचती है, चरम सीमा माने क्या? कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, जिंदा रह ही नहीं सके, इसके अभाव में उतना दुख होवे, उतनी वेदना होवे कि प्राण छूट जाए शायद, ऐसी चरम सीमा की जब भावना होती है तब कुदरत बंधी हुई है। ये कुदरत की एक करामत है, चमत्कार है कि कहीं न कहीं उसको उनको भेद करा देते हैं। तो उसी दिनों में आत्मधर्म हिंदी भाषा में सोनगढ़ से प्रकाशित होने का प्रसंग चल गया था, और उसके प्रचार के लिए हिंदी भाषी क्षेत्र में आत्मधर्म कुछ नकलें ऐसे ही फ्री ऑफ चार्ज पोस्ट करने में आ रही थी। ऐसी एक नकल उनको भी मिली, उनमें उसको ठंडी हवा, शांति की हवा आ गई। कह रहे विकल्प शांत करने की बात कर रहे हैं कि इसमें तो मुझे यहां फौरन जाना चाहिए। वो पढ़ करके बैठे नहीं रहे, सोनगढ़ चले गए। भाषा नहीं जानते थे लेकिन भाव तो जानते थे। जो भाव को पकड़ते हैं उसको भाषा की दिक्कत नहीं पड़ती, नहीं होती। उन्होंने गुरुदेव को ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया कि साहब आप में गुजराती में बात मत फरमाइए, आज हिंदी में प्रवचन करिए, ऐसा भी नहीं कहा। सुनते रहे, गुरुदेव के आत्मभावों को पीते रहे, सुनते रहे नहीं, पीते रहे और अंदर में उतारते रहे, तो काम हो गया। तो आजकल ज्ञानी नहीं है ऐसी निराशा में रह करके हमें काम नहीं करना है, हमें तो भावना में रहना है। आज नहीं तो कल हमारी भावना बढ़ेगी तो काम हो ही जाएगा। अगर हमारी भावना में कुछ दम नहीं है तो हमारे बगल में बैठे होंगे तो भी हमारी नजर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भावना से तो निर्मलता आती है, पहचान की योग्यता आती है, वो भी नहीं हुआ। तो कम से कम भावना को तो मत छोड़े। ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी में क्या अंतर होता है? ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी में बहुत अंतर होता है। वाणी में भाषा शब्द प्रयोग एक सा हो सकता है, क्यों कि जैसे ज्ञानी की वाणी है वैसी अज्ञानी बोलने का वाणी में सीख लेता है, सीख सकता है, बोल सकता है। फिर भी जो रस ज्ञानी को आता है, जो आत्मरस में वो सराबर होकर के बोलते हैं, ऐसा कार्य तो वो कर सकता नहीं बोलने वाला अज्ञानी। इसलिए वाणी का अंतर ध्वनि में बहुत बड़ा अंतर रहता है। एक दृष्टांत है कि पहले चांदी के रुपये थे, जो बुजुर्ग लोग हैं सबको मालूम होगा, और नकली रुपये भी बनते थे कलाई के। हाँ, चांदी का रुपया पुराना हो गया हो, कलाई का नया नया बन करके आया हो नकली, दिखाव में तो दोनों रुपया ही दिखता है, उसमें कोई छाप में तो फर्क होती नहीं, लेकिन आवाज से फर्क पड़ता है। उस जमाने में पछाड़ करके इनके आवाज को देख लेते थे। जो आवाज चांदी देगी वो कलाई तो दे ही नहीं सकती, तो दिखाव से तो कोई काम नहीं होता। ऐसे ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में आशय भेद होता है। क्या फर्क होता है? आशय भेद होता है। आशय भेद मैंने क्या कि ज्ञानी है वो अपना आत्मकल्याण साधते हैं, तो वाणी आत्मकल्याण साधते साधते निकलती है। अज्ञानी किसी न किसी प्रकार के राग को साधता है, कभी बोलने का, कभी अपना इंप्रेशन जमाने का। खास करके अज्ञान दशा में वक्तापना होता है तो उसमें क्या होता है कि मेरी वाणी, मेरी छटा, मेरी शैली ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को मेरा प्रभाव में आ जाए और मेरी प्रशंसा होवे, मेरी अच्छी इंप्रेशन या मेरी कीर्ति या मेरी प्रशंसा होवे, ऐसा कुछ न कुछ अभिप्राय रखता है। किसी न किसी प्रकार के राग को साधते साधते वो बोलता है, जबकि अज्ञानी आत्मा को साधते साधते ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर तो वो होता है परिणमन का, तो उसकी वाणी में उसी कारण से बहुत सा अंतर रहता है। ज्ञानी की वाणी में और भी एक बात बहुत सी मुख्य बात है, वो तो वो है कि ज्ञानी को पदार्थ दर्शन है। क्या है? स्वरूप जो आत्मा पदार्थ है उसका दर्शन है, और पदार्थ में अनेक प्रकार के विरुद्ध धर्म भी है, परस्पर विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण से वो अनेक विरुद्ध धर्म को धारण करता है। ऐसे पदार्थ को दर्शाने के लिए पदार्थ दर्शन होने के कारण से पूर्वार्थ पर विरोधता कहीं नहीं आती। इसलिए ज्ञानी की वाणी का एक खास विशिष्ट लक्षण वो है को पूर्वार्थ पर अविरोध कह बात करते हैं, जबकि अज्ञानी को पदार्थ दर्शन नहीं होने से कहीं न कहीं पुरवार पर विरोध उनकी वाणी में आए बिना रहता नहीं। तो उस तरह से सुनने वाला अगर परीक्षक होता है तो पता चल जाता है कि ये तो अपनी बात को काटता है, जबकि ज्ञानी की वाणी में ऐसा होता नहीं है। और ज्ञानी की वाणी आत्मार्थ उपदेशक होती है। आत्मा का जो अर्थ माने प्रयोजन है, और प्रयोजन को मुख्य रख करके ज्ञानी बोलते हैं, जबकि अज्ञानी को वो प्रयोजन अपना ही अंदर में नहीं है, तो कोई और प्रयोजन से उनकी बात चलती है, तो उनकी वाणी में आत्मार्थ का बोध जो है वो आएगा नहीं, वो उपदेश आएगा नहीं। और बात वो भी है कि ज्ञानी की वाणी आत्मा को सतत जागृत करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि वो भी आत्म जागृति में रह करके स्वरूप की सभान अवस्था में बोलते हैं, जबकि अज्ञानी को स्वरूप का भान ही नहीं है। तो उनकी वाणी में खुद ही आत्म में जागृत नहीं है, तो उसमें उसकी वाणी में आत्म जागृति का जो अंडरटोन है, अंतर्ध्वनि है, वो कहां से आएगा? आएगा नहीं। तो आत्म रस से भीगी भीगी जो वाणी होती है, और वैसे ही बात आत्मरस बिना शुष्क होती है, वो शुष्क ज्ञानी और आत्मज्ञानी में वाणी से बड़ा अंतर पड़ जाता है। वो बात समझने वाले तो समझते हैं, जिसको वाणी का व्यामोह होता है, शब्दों का, भाषा का, ऑरेटरी का, वक्तृत्व का व्यामोह होता है, शायद उनको पहचान नहीं हो सकती है। लेकिन जो आत्मार्थी होते हैं वो उसका जो अंतर है उसको अच्छी तरह समझते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्म साधना कैसे करें? ऐसी परिस्थिति को निरंतर अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है? परिस्थिति के आधार से तो साधना नहीं होती। साधना तो आत्मा के आधार से होती है। जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की गिनती में होते हैं वो साधना करने के लिए सक्षम नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें तो परिस्थिति से ऊपर उठ के हमारी साधना करनी है। परिस्थिति की गिनती करने वाले का काम नहीं है, मार्ग नहीं है। आत्मार्थी को तो प्रारंभ से ही ऐसा एक निर्धार होता है, एक निश्चय होता है कि हर हालत में मैं मेरा काम करूंगा, चाहे परिस्थिति चाहे भी हो, जैसे भी हो, कैसे भी हो। और ज्ञानियों का तो ये उपदेश है, बोध है कि कोई परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल तो है ही नहीं, तेरी कल्पना है और कुछ नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो जीव की भ्रांति है, कल्पना है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति आत्मा को अनुकूलता प्रतिकूलता दे ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा के लिए तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं, मान रखा है ये प्रकार मुझे अनुकूल है, ये प्रकार मुझे अनुकूल नहीं है। जबकि हमारे यहां तो सर्व से सर्वथा भिन्न ज्ञानमय आत्मा हूं, ऐसा बोध मिलता है ज्ञानियों की ओर से। जब भिन्न हो तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता की बात रही कहां। बात ही नहीं रहती वो तो। पड़ोसी के घर में लाभ नुकसान होता है, इसकी उपाधि आती है क्या? क्यों? क्या अपनापन नहीं है वहां? और जहां अपनापन मान रखा है उसकी उपाधि आए बिना रहती नहीं। तो हमें तो उपदेश ही मिल रहा है कि तुमने अपनापन कर रखा है, यही तुम्हारा व्यामोह है, यही दर्शन मोह है। क्या है तेरा बताओ, कौन सी चीज तेरी है? कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति की गिनती नहीं करनी है। फिर भी पूर्व संस्कार के कारण से कुछ न कुछ लगेगा तो सही, ये बात तो रही हमारे विचार की और हमारे अभिप्राय की। परंतु जब परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आएगी तो कुछ न कुछ अनुकूल प्रतिकूल लगेगा, इसका क्या, ये सवाल है। तो उसी वक्त हमें पुरुषार्थ करना है। और प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा पुरुषार्थ करना कर सकते हैं, अनुकूल परिस्थिति में तो फंसना कभी हो सकता है, फंसने का कोई नियम नहीं है, प्रायः लोग फंसते हैं। लेकिन प्रतिकूलता में तो राग तीव्र नहीं होता, और द्वेष की जगह उदासीनता आ जाए तो अच्छी बात है। अगर द्वेष आ गया तो वो की वो बात होगी, द्वेष तो हमें करना ही नहीं है, जैसे राग नहीं करना है वैसे। तो परिस्थिति को अनुकूल नहीं बनानी है हमें, आत्म साधना के अनुकूल हमारे परिणाम को बनाना है, परिस्थिति को कुछ नहीं करना है। और न हमारा कोई अधिकार भी है कि हम कोई परिस्थिति को बदल सकते हैं। जिस जीव को जिस कर्म का उदय आता है जिस वक्त, उसमें फेरफार करने का इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी को भी अधिकार नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकते। और कर नहीं सकते तो हम भी नहीं कर सकते, और करने की आवश्यकता भी है ही नहीं। परिणाम को ठीक करना है, परिस्थिति को ठीक नहीं करना है।
भाव होता है, पंच कल्याण में जाने का भाव होता है, लेकिन अपन घर में कभी बोलते हैं तो वो घर की परिस्थितियाँ अपने सामने रखते हैं कि अभी बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी ये है, अभी वो है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम बच्चों के साथ रहो, हमको जाने दो।
ठीक है।
तो नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूँगी, बच्चे भी साथ चलेंगे, अगली बार चलेंगे, इस बार रुक जाओ, अगली बार चलेंगे।
ठीक है।
तो यही होता रहता है। अभी उनका अपन पूरे परिवार की अनुकूलता देखते हैं तो अपना भी निकलना नहीं होता।
हाँ हाँ। तो क्या है, भले ही सब साथ में आ जाए धार्मिक प्रसंग,
सहयोग बन नहीं पाते।
नहीं, वो तो आना चाहे तो आ सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है। और जो नहीं आना चाहे वो नहीं आए।
तो सुकूलता आ जाती है कि आना हो नहीं पाता। तो वर्षों से अपन सोचते सोचते
ऐसा है,
वर्ष एक एक वर्ष करके पाँच, दो दो चार चार पाँच पाँच वर्ष निकल।
जो काम का महत्व भाषित होता है, जो काम का महत्व भाषित होता है उस काम की व्यवस्था बिठाते हैं कि नहीं बिठाते हैं। हाँ, जैसे हमको बहुत से काम हैं, लेकिन हार्ट अटैक आया तो हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उस वक्त सब काम पड़े रहते हैं कि नहीं, बच्चों की परीक्षा भी पड़ी रहेगी, धंधा भी पड़ा रहेगा। बात थोड़ी नहीं, हाँ, अपनों को महत्व भाषित होना चाहिए। महत्व भाषित होने से उसकी प्रायोरिटी आई जाती है। बस टॉप प्रायोरिटी में आत्मकल्याण को ले लो, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। टॉप प्रायोरिटी में आत्मकल्याण को लेना चाहिए। इसका इतना महत्व आए बिना हम कोई भी धर्म साधन करेंगे किसी भी प्रकार का, वो लास्ट प्रायोरिटी में रख करके करेंगे। आत्मकल्याण को लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं और संसार के कार्य को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, तो ये हमारा आत्मकल्याण नहीं होता है। और अनादिकाल से यही काम किया हमने, अब तो चेंज ऑफ प्रायोरिटी कर लेना है तभी काम होगा, और होगा ही, वो बात गारंटीड है। तो प्रायोरिटी में आत्मकल्याण को रखें और काम नहीं हुए ऐसा कभी होने वाला है ही नहीं। करता है ना, जब भाई साहब क्या कहते हैं कि नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन को पा लेता है तो उतनी प्रतिकूलता क्या है, इसके लाख करोड़ में भाग की भी इधर उधर प्रतिकूलता नहीं है, फिर हम क्यों रोते हैं प्रतिकूलता से। हाँ, हमारे गुजराती में एक कहावत है, रांडी रुवे मांडी रुवे पण साथ भरतार वाली रुवे से आटो। रांडी मैंने कोई बाय का पति मर जाता है तो वो तो रोने लगेगी, कह रही मेरा धनी मर गया अब मैं क्या करूंगी, मेरे खाने का पीने का रहने का क्या व्यवस्था बनेगा, तो वो तो रो गए। मान ली मैंने कोई शादीशुदा है, शादी ब्याह करके रोती है, कह रही क्या करूं, मेरा धनी है उसमें कोई दम नहीं है, कोई कमाता नहीं है, कोई धंधा आता नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का काम उसको आता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, ऐसा गंवार है, वो है वो है, तो वो भी रोवे। लेकिन साथ साथ धनी हो वो क्यों रोती है। वो दृष्टांत थोड़ा अगंभीर है लेकिन आशय बहुत गंभीर है इसका। उसी में रायचंद जी ने वो दिया है दृष्टांत कि तुमको नारकी जैसी प्रतिकूलता नहीं, तिरियंत जैसी प्रतिकूलता नहीं, वो लोग धर्म को प्राप्त करते हैं, तुमको तो कितनी सुविधा है कि तुम मनुष्य हुआ, बुद्धिमान हुआ, जैन धर्म मिला, ज्ञानियों के वचन शास्त्र मिले, देवगुरु शास्त्र सच्चे मिले, ग्रीक मिथ्यात्व के संप्रदाय में आया नहीं, ये सब कुछ आया है, स्वास्थ्य अच्छा है, विचार कर सकता है, काम कर सकता है, सब कुछ अच्छा धनी है तुमको, तो तुम क्या रोता है? ये बात है। तो ये सब रोना तो बंद करना होगा। रोने वाले का यहाँ काम नहीं है। रोते रोते मत आइए, हंसते हंसते आइए। रोने वाले का काम नहीं है। ये तो भगवान महावीर का मार्ग है। वो महावीर थे, हमको भी वीरता लेकर के काम करना है। ये वीरों का मार्ग है। क्या ज्ञानी को कुदरत और चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए? किस प्रकार का चमत्कार? कुदरत अलग चीज है, चमत्कार अलग चीज है। कुदरत तो वो है कि जो वस्तु का स्वभाव है तो उसको कुदरत कहते हैं, तो उस पर तो अविश्वास करने का सवाल नहीं होता। और चमत्कार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमारा आत्मा ही चैतन्य चमत्कार स्वरूप है। उसमें ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्ति है, महाआश्चर्यकारक पदार्थ है, कि संसार में दीन होकर के भटकने वाला पशु आदि गति में जाने वाला दीन प्राणी ऐसा चमत्कार करता है अंदर से कि सिद्ध भगवान होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इससे बड़ा चमत्कार कौन सा हो सकता है? मामूली प्रसंग का जो हेरफेर है उसकी क्या गिनती है? संसार में भटकने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा चमत्कार तो अंदर से होता है जब आत्मा प्रकट होता है। तो इससे बढ़िया चमत्कार जगत में तो कोई है ही नहीं। इसलिए दूसरे दूसरे चमत्कार पर चमत्कार का आकर्षण हमको तो होना ही नहीं चाहिए। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो अतिक्षय क्षेत्र बोला जाता है। अतिशय है वो शास्त्र परिभाषा का, जैन शास्त्र की परिभाषा का शब्द है और उसका रूढ़ी अर्थ गलत है। चमत्कार कुछ होता है, प्रतिमा जी से, भगवान से हमें दर्द मिट जाता है, हमें संतान की प्राप्ति होती है, हमारी निर्धनता चली जाती है, ये रूढ़ी अर्थ है, वो सही नहीं है। तीर्थंकरों को 34 अतिशय होता ही है। होता है कि नहीं होता है? वो 34 अतिशय माने क्या? कि संसार के लोगों से इनके पुण्य ऐसे विशिष्ट प्रकार के होते हैं कि जिसकी बराबरी में संसारियों का कोई पुण्य होता नहीं है। उतनी सी बात है। लेकिन बीतराग से राग होवे ऐसे पदार्थों की अपेक्षा रखना या भीख मांगना, ये काम जैनियों का तो नहीं होता, अन्य मतियों का होता है। अन्य मत में तो ऐसा ही चलता है। अगर जैनियों में भी ऐसा ही चला तो जैन मत और अन्य मत में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। वहां तो ऐसा ही चलता है कि भगवान हमको वो दे दो वो दे दो, ये तो वितराग है। हमारे तो भगवान भी ध्यानस्थ विराजमान है, दूसरों की तरह रागी द्वेषी दिखाव भी नहीं है, है क्या? और अगर हम मांगे तो हमारे निर्वाण पद को मांगे, तो मांगना ही है तो कम चीज क्यों मांगना? सर्वोत्कृष्ट पद की मांग करो। इस संसार के धूली जैसे पदार्थ को मांगने का क्या फायदा है? तो मांगने में मांगने वाले की भी अक्ल का सवाल है ये। जैसे किसी राजा ने बोला किसी आदिवासी को कि बोल, तुमने हमको जंगल में बाघ से सिंह के मुंह से बचाया, तुम हमारा राज मांगो तो राजपाट हम दे सकते हैं, तुम मांग लो। उसको मांगने की अकल नहीं थी। उन्होंने बोला कि मेरी जूती फट गई है, जरा सिलाई करवा दो ना। क्या बोला? कि मेरा जूता फट गया है, टूट गया है, थोड़ी अच्छे से सिलाई करवा दो तो दो चार महीना तो गुजर जाए, निकल जाए। मांगने वाले को अक्ल नहीं थी कि राजा से क्या मांगा जाए। ऐसे वितराग से मुक्ति मांगी जाए तो मुक्ति को देने वाले हैं, मांगने वाले को अक्ल नहीं है तो धूलि को मांगता है कि पैसा दे दो, शरीर दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ऐसी बात हो गई है, सोच लेना है। चमत्कार के चक्कर में हमें फंसना नहीं चाहिए। और प्रश्न है, पर्याय किससे आती है, किसमें से आती है और किसमें विलीन होती है? आने के पहले और जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है? तथा भोजनशाला में या भोजन देते समय क्या जूते चंपल पहनना भी धर्म है? ठीक है, ये प्रश्न आता है खास कर। अपने को तो किसी के जूते चप्पल पर हमारी दृष्टि नहीं देनी है, यहाँ तो इसे कोई ऊपर उठने की बात है। तो दो बात को साथ में नहीं जोड़नी चाहिए। जब तत्व की बात ही है कि पर्याय किससे आती है, कि पर्याय तो द्रव्य से आती है और द्रव्य में हो जाती है। जैसे पानी का तरंग पानी में से पैदा होता है और पानी में ही विलीन हो जाता है, वैसे और वो तरंग होने के पहले भी एकाकार पानी था और तरंग मिट जाने के बाद भी पानी ही पानी हो गया, और तरंग के वक्त भी पानी ही पानी था, कोई दूसरा नहीं था। वैसे पर्याय द्रव्य में द्रव्य की योग्यता के रूप में होती है, पर्याय के रूप में नहीं होती है। उसको कारण योग्यता कहते हैं, और जो विलीन हो जाती है तो उसको कार्य योग्यता कहते हैं, और वो द्रव्य रूप हो जाती है, पर्याय रूप में अंदर में नहीं रहती है, योग्यता के रूप में रहती है। ऐसी एक द्रव्यानुयोग में परिस्थिति है। और ये विषय धवल आदि ग्रंथों में भगवान वीरसेन स्वामी ने बहुत छेड़ा है, काफी लिया है। उपशम सम्यक्त्व होकर छूट जाता है, फिर क्षोभम सम्यक्त्व कितने काल बाद होता है? क्षोभम तो फौरन हो जाता है, परिणामों में शिथिलता होने पर पुरुषार्थ बना रहे, कृपया विस्तार से समझाएं। परिणामों में शिथिलता होने पर पुरुषार्थ बना रहे हैं, हाँ वो तो है कि जितनी सावधानी होगी उतना पुरुषार्थ बनेगा। पुरुषार्थ तो द्रव्य के अवलंबन से आता है, अंतर सावधानी स्वद्रव्य की जितनी आएगी उसकी प्रत्यक्षता जितनी नजर आएगी सहज पुरुषार्थ उठेगा। और पुरुषार्थ वो सहज स्वरूप का होना चाहिए, सहज होना चाहिए, वो कोई कर्तृत्व का विषय नहीं है। ज्ञानी की पहचान कैसे की जावे, ये प्रश्न जो है उसमें हमें पहले योग्यता पर ध्यान देना है कि पहचान करने की हमारी योग्यता हम कैसे तैयार करें, क्योंकि ये बात निमित्त प्रधान होकर के भी वास्तव में उपादान प्रधान है, क्योंकि बिना योग्यता पहचान नहीं होती। भले ही कितना भी संघ हो लेकिन योग्यता चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत काल समीप रहने से कोई पहचान हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, इसमें योग्यता की प्रधानता है। इसलिए योग्यता प्रधानता में तो जैसे कि बात चली थी कि दृढ़ मुमुक्षुता होवे, दृढ़ मुमुक्षुता मैंने एक मोक्षाभिलाषी होकर के, मोक्षार्थी होकर के, एक मोक्ष के लिए ही हमारा प्रयास होता है, ऐसी मुमुक्षुता उत्पन्न होवे, अंतर जागृति होवे। और ज्ञानी के जो भी वचन हमें हमारी योग्यता में लागू होवे, उसका अमलीकरण करने की हमारी तैयारी होवे और हमारा अंतर्मुख होने की भावना और जिज्ञासा विशेष रूप से होवे, तो ऐसी योग्यता में ज्ञानी की पहचान हो सकती है, उसके अंतर परिणति का दर्शन होता है और पहचान होती है। वेदन के लिए पढ़ने नहीं आता है, कैसे प्रक्रिया किस प्रकार की प्रैक्टिस की, हाँ वेदन के लिए प्रैक्टिस की प्रक्रिया किस प्रकार की जाए, ऐसा ही लिखा है ना।
ज्ञानी की पहचान कैसे की जावे, नंबर दो, वेदन के लिए प्रैक्टिस की प्रक्रिया किस प्रकार की जावे, दो प्रश्न है प्रश्नकार के।
जो प्रैक्टिस की प्रक्रिया है उसमें तो ऐसी बात है कि ज्ञान वेदन तो सभी को चला है, चलता ही है, आत्मा खुद ही अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाई सभी को अनुभव में आ ही रहा है, परंतु पर के साथ एकत्वपना का निश्चय होने से भीतर के वेदन पर हमारा लक्ष्य की पहुंच नहीं है, यही कारण से हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे में ज्ञान वेदन क्या चीज है, उल्टे वेदन में हम फंसे हुए हैं, यानी पर पदार्थ का वेदन या अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी अध्यासित भाव से हमको पर पदार्थ का वेदन होता है, ऐसा अध्यास बना रहता है। तो वेदन की प्रैक्टिस जिसको करना है उसको सबसे पहले अपने अंतर अवलोकन में जाना होगा और अवलोकन की प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। अपने परिणामों में ज्ञान का वेदन जो तिरोभूत हो रहा है वो उतना सूक्ष्म है कि अवलोकन का दृष्टिकोण सूक्ष्म हुए बिना ये मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए वेदन को, वेदन के लिए अवलोकन की प्रैक्टिस करनी होती है और वो जितनी सतत होती है, निरंतर होती है, उतनी उसमें सफलता मिलती है। इसलिए वेदन के लिए तो अवलोकन की प्रैक्टिस एक ही इसका प्रक्रिया है, दूसरी कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है। समय हुआ है, यहां तक रखें।
Thank you.
Ale
Mm-hmm.